बैठे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब पिता परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक होंगे और हमेशा की तरह आज भी प्रभु के वचनों में से सीखने के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा कि हमने पिछले अध्ययन में रूपांतरण, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लड़का और फिर से यीशु अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और कर के पैसे मछली के मुंह से निकालते हैं आदि विषयों को देखा था। आज हम छोटा बालक, खोई हुई भेड़, आने वाली कलीसिया में आचरण और क्षमाशीलता पर दृष्टांत के विषय में अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम इस अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमें दिया है ताकि हम सब मिलकर आपके पवित्र वचन का अध्ययन कर सके। आज जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी श्रोता भाई बहनों को अपनी समझ प्रदान करें ताकि प्रत्येक आपके वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। इस समय हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए भी जो बीमार और अपने जीवन में दुखी व निराश में हैं। प्रभु जी, आप उन पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए और उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ कीजिए, उन्हें शांति प्रदान कीजिए। फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता करें। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, मत्ती में अगले कुछ अध्याय ऐसे नहीं लगते हैं जो कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, परंतु वे बहुत से अंधेरे कोनों को भरते हैं। यह विषयांतर के कारण उठा जो स्वर्ग राज्य में अचानक राजा को अस्वीकार करने से हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय के रहस्यमय दृष्टांतों के वर्णन में हमें इस युग के स्वर्ग राज्य की संपूर्ण रूपरेखा दी गई है, परंतु अभी भी प्रश्नों के उत्तर देना बाकी है। यह अध्याय उनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सहायक हैं। अब हम पाते हैं कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए नया जन्म आवश्यक है। एक छोटे बालक को इस पाठ को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 1 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, लिखा है, उस समय चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है। मुझे आश्चर्य होता है कि यदि आप यहाँ पर शारीरिक उद्देश्य को ढूंढ निकालने में ध्यान देते हैं तो हो सकता है कि यह मेरी आलोचना दिमाग के कारण हो, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति इसी विषय के बारे में बातें कर रहे थे और हो सकता है कि उनमें से 2 या 3 ने यह महसूस किया होगा कि वे स्वर्ग राज्य में बड़े होने के हकदार हैं। इसलिए प्रभु ने संवेदनात्मक कार्य किया जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 2 पद में आगे पढ़ते हैं। तब उसने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और बीच में खड़ा करके कहा, यहाँ पर ध्यान दे, यह हमसे क्या कहता है। यह हमसे कहता है कि यह छोटा बच्चा यीशु के पास बिना किसी हिचकिचाहट के आया। मार्कुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 14 पद में प्रभु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। यहाँ पर समस्या छोटे बच्चों को उसके पास आने देने की नहीं थी, परंतु बड़ों को रोकने की थी जो छोटे बच्चों को प्रभु के पास आने देने में बाधा बन रहे थे। हमारे पास यहाँ यह एक सुंदर दृश्य है, हमारे प्रभु इस छोटे बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा करते हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 3 पद में आगे पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बच्चों के समान न बनो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे। मित्रों, यही एक पद है जिसका निश्चित रूप से दुरुपयोग हुआ है और इसे गलत समझा गया है। परंतु यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु परिवर्तन के बारे में बातें कर रहे हैं, न कि प्रत्यार्पण या प्रत्यावर्तन के बारे में। कुछ लोग सोचते हैं कि इस पद का मतलब है कि आप किसी भी असाधारण तरीके से अपने बचपन में लौट जाएं या कि आप अपने कार्य में किशोर बने ताकि आप स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकें। प्रभु यहाँ पर अपने पुराने बचपने में जाने की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु वह एक नए जीवन में जाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे प्रभु शिष्यों के विचारों में तर्क देते हैं, जैसे कि वह उनके ध्यान को राज्य में आदरणीय स्थान को पाने की ओर से हटाकर बताते हैं कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पहले उसमें प्रवेश होने के लिए निश्चित हो जाएं। मित्रों, यह भी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3:3 की तरह मूलभूत है। लिखा है, यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नया जन्म न ले वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। यहाँ पर इस पद में अधिक महत्व नए जन्म को दिया गया है। आपको एक छोटे बच्चे की तरह होना है, इसका मतलब है कि आपका नया जन्म अवश्य है। जब आप नया जन्म पाते हैं तो आप आत्मिक रूप से एक बच्चे की तरह बढ़ते हैं। दुर्भाग्यवश बहुत से लोग हैं जो अपने आत्मिक अपरिपक्वता को नहीं पहचान पाते हैं। एक बार जब मैं अपने एक पादरी मित्र की कलीसिया में गया तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उसके पास जो भी गवाही देने के निवेदन आए थे वे अधिकतर नए विश्वासियों के थे जो सामने आकर अपनी गवाही देना चाहते थे। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि यह मूलतः शिष्यों के विवाद के जैसा ही है कि कौन स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा होगा। हमारे प्रभु कहते हैं कि यदि आपका परिवर्तन हो गया है तो अपने आत्मिक आयु के बारे में सोचें। आपको एक छोटा बच्चा बनना है। क्या एक छोटा बच्चा तुरंत उठकर बोल पाएगा? क्या एक छोटा बच्चा कलीसिया में एक अधिकारी हो सकता है? कलीसिया में बिशप के पद के लिए योग्यता की सूची बनाते हुए पौलुस नव शिष्य को दरकिनार करते हैं। 1 तीमोथी के पत्र 3:6 में लिखा है, वह कोई नया चेला ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि अहंकार में पड़कर शैतान के समान दंड का भागी हो जाए। मित्रों, मैं सोचता हूँ कि हमारे प्रभु यहाँ पर इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 और उसके 4 में पढ़ते हैं। लिखा है, जो कोई अपने आप को इस बच्चे के समान दीन बनाता है वही स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा है। जब आप पीछे जाकर और राज्य में प्रवेश करने को महत्व देते हैं जो नया जन्म है, तब आप पाते हैं कि वह जो अपने आप को छोटे बच्चे की तरह दीन करता है वह स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा है। अब हम मत्ती रचित सुसमाचार 18 उसके 5-6 को पढ़ते हैं। लिखा है, और जो कोई मेरे नाम से ऐसे एक बच्चे को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, परंतु जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास रखते हैं एक को भी ठोकर खिलाए तो उचित होता है कि उसके गले में चक्की का भारी पाट लटकाकर उसे समुद्र की गहराई में डुबा दिया जाता। मित्रों, यहाँ पर शब्द ठेस पहुंचाने का अर्थ है ठोकर खिलाना, वह जो पाप में ले जाता है। इसके विरोध में चेतावनी देने के लिए यीशु कठोर शब्द या कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है कि जब वह इस भाग में इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो वह बच्चों के बीच में सुसमाचार प्रचार को महत्व दे रहे हैं। वह मसीह के लिए बच्चों को जीतने को प्राथमिकता देते हैं। आज जो भी बच्चों के साथ काम कर रहे हैं मैं उनकी सराहना करता हूँ, इसके जैसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। मित्रों, डीएल मूडी की एक कहानी बताई गई, जब एक रात वह सभा से घर पहुंचे तब उसके परिवार वालों ने उनसे पूछा कि उस रात कितने लोग परिवर्तन हुए, और उसने कहा 2.5। उसके परिवार ने कहा, ओह, 2 और एक बच्चे ने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया? मूडी ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, 2 और एक बड़े व्यक्ति ने प्रभु को स्वीकार किया है। वह कहता ही रहा, बड़ा व्यक्ति एक बूढ़ा था और उसके पास देने के लिए सिर्फ आधा ही जीवन बाकी था, इसलिए वह सिर्फ एक आधा परिवर्तित था। छोटे बच्चे महत्वपूर्ण हैं। एक स्कॉटिश कलीसिया के एक पादरी ने कई साल पहले त्याग पत्र दिया, और जब उसने ऐसा किया तो अगुओं ने उससे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? उसने उत्तर दिया कि इस पूरे वर्ष में मेरे पास सिर्फ एक परिवर्तित व्यक्ति है जिसका नाम वी बेबी मफत है। यही वह व्यक्ति है जिसने अफ्रीका में प्रचार कार्य के लिए द्वार खोला। इस प्रचारक के लिए यह सबसे बढ़िया साल था जो उसे कभी नहीं मिला था। इस पद में प्रभु बच्चों पर अधिक जोर देते हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 7 और 8 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का आना तो अनिवार्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर आती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए लूला या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना इससे भी कहीं उत्तम है कि तू दो हाथ या दो पैर होते हुए अनंत आग में डाला जाए। मित्रों, इससे ज्यादा और मैं कुछ भी नहीं कह सकता या सोच सकता। अब यहाँ फिर से देखें मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसके 9 और 10 पद में लिखा है, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए काना होकर जीवन में प्रवेश करना इससे भी कहीं उत्तम है कि तू दो आंख रखते हुए नरक की अग्नि में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी एक को भी तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सर्वदा देखते रहते हैं। मित्रों, हमारे प्रभु कहते हैं कि हमें इन छोटों में से किसी एक को भी तुच्छ नहीं जानना है। जब उसमें से कोई एक मरता है तो तुरंत उसका आत्मा परमेश्वर के साथ होने के लिए चला जाता है। मेरे मित्र, सभी छोटे बच्चे स्वर्ग में जाते हैं। यदि आपने अपने छोटे बच्चों को खोया है तो यह जानकर आपको काफी तसल्ली मिलेगी कि वे स्वर्ग में हैं। और वे स्वर्ग में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वे निर्दोष हैं या वे आपके हैं, परंतु वे स्वर्ग में इसलिए जाते हैं क्योंकि यीशु उनके लिए मरा। इसी के बारे में हमारे प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्हें ठेस मत पहुंचाओ, उन्हें ठोकर मत दिलाओ, उन्हें मेरे पास आने दो। यदि वे मर भी जाते हैं तो उनकी आत्मा मेरे पिता की उपस्थिति में रहने के लिए जाएगी। इसलिए बहुत से माता पिता अपने छोटे बच्चों के अनंत निवास के लिए आश्चर्य करते हैं। राजा दाऊद अपने बच्चे के वास स्थान को जानते थे। जब उसका पुत्र जो बेर्शेबा से जन्मा था बीमार पड़ा तो उसने उस बच्चे के जीवन के लिए बहुत विनती या निवेदन किया। हमें इसके बारे में दूसरा सामुएल की पुस्तक उसके 12 अध्याय और उसके 15 पद से लेकर के 23 पद में इसका वर्णन मिलता है। उसने उपवास किया और रोया और पूरी रात भूमि पर पड़ा रहा, परंतु जब बच्चा मर गया तो वह उठा, नहाया और उसने अपने वस्त्र बदले और वह परमेश्वर के भवन में गया और आराधना की। उसके नौकर उसकी इस क्रिया को देखने के द्वारा घबरा गए और दाऊद का वर्णन इस प्रकार से था, जब बच्चा जीवित था तो मैंने उपवास किया और मैं रोया, क्योंकि मैंने सोचा क्या जाने यहोवा मुझ पर अनुग्रह करे जिससे बालक जीवित रहे, पर अब तो वह नहीं रहा, मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा कर ला सकता हूं? मैं उसके पास जाऊंगा पर वह मेरे पास नहीं लौटेगा। मित्रों, उसे पूरा भरोसा था कि एक दिन वह भी उसके साथ होगा। यह एक बहुत ही कीमती या बहुमूल्य सत्य है। आप में से कई लोगों ने अपने छोटे बच्चों को खोया है और आप में से कई लोगों ने उनके कब्रों में फूल रखे हैं, लेकिन इस बात को जाने कि वे स्वर्ग में पिता के पास हैं, वे बचाए गए हैं और एक सुनहरे दिन में आप भी वहां पर उनसे मिल सकेंगे। इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बच्चों के प्रति हमारे प्रभु की भावनाओं की ओर ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर हमारे दिनों में जबकि इन छोटे बच्चों के विरोध में कई अपराध किए जा रहे हैं। कुछ समय पहले मैं एक माँ और सौतेले पिता के बारे में पढ़ रहा था जो एक छोटी बच्ची को सड़क के किनारे छोड़कर चले गए। इस प्रकार की बातों को पढ़ना कितना आघात पहुंचाने वाला होता है। वे बस छोटी सी बच्ची से छुटकारा पाना चाहते थे। कुछ लोग यह विश्वास करते हैं कि नरक नहीं है, परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि कोई नरक नहीं है तो इस प्रकार के लोगों के लिए एक होना चाहिए और एक है। हमारे प्रभु कठोर भाषा का प्रयोग हमें बच्चों को ठोकर खिलाने के विरोध में चेतावनी देने के लिए करते हैं। आगे हम खोई हुई भेड़ों के दृष्टांत को देखते हैं। अब हमारे प्रभु एक खोई हुई भेड़ के अद्भुत दृष्टांत को हमारे सामने रखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय और उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं, मनुष्य का पुत्र खोई हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। मित्रों, यह दृष्टांत लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के दृष्टांत से भिन्न है। इस पद का मुख्य शब्द बचाने या उद्धार है और लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के दृष्टांत में खोई हुओं को ढूंढने पर अधिक महत्व दिया गया है और मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय में खोए हुओं को बचाने पर अधिक महत्व दिया गया है। हम यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 12 और 13 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तुम क्या सोचते हो? यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़े हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को पहाड़ पर छोड़कर उस एक को ढूंढने न जाएगा जो भटक रही है? और यदि ऐसा हो कि वह उसे पा ले तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसके लिए उन 99 की अपेक्षा जो नहीं खोई थी अधिक आनंद मनाता है। मित्रों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वह कैसे इसको बंद करता है। वह अभी भी उन छोटे बच्चों के बारे में ही सोच रहा है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 14 पद में आगे पढ़ते हैं, अतः तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है ऐसी इच्छा नहीं कि इन छोटों में से कोई एक भी नाश हो। मित्रों वह तब तक उनकी देखभाल करता रहेगा जब तक कि वे लेखा देने की उम्र के लायक नहीं हो जाते हैं, परंतु आप जो माता पिता हैं आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें मसीह में बढ़ाएं। मैं डरता हूं कि हमारे स्कूल गिनी पिग की तरह हमारे बच्चों का मानवीय तत्व ज्ञान के लिए उपयोग कर रहे हैं। जवान लोग समकालीन विद्यालय के कमरे में एक भयानक कीमत दे रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों परमेश्वर के सामने इस क्षेत्र में हमारे पास एक आश्चर्यजनक जिम्मेदारी है। हम आगे देखते हैं कलीसिया में आचरण के लिए आदर्श। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, यदि तेरा भाई पाप करे तो जाकर उसे अकेले में समझा, यदि वह तेरे सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया है। यदि वह आपके विरोध में पाप करता है तो आपको उसके पास जाना है। यह पद एक विश्वासी के द्वारा पाप करने के बारे में है। दायित्व तो उसका बनता है जो घायल हुआ है कि अपने भाई के पास जाए जिसने उसे दुख पहुंचाया है, और न कि इसके विपरीत करे। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा हुआ है, परंतु यदि वह तेरी न सुने तो अपने साथ एक या दो व्यक्ति और ले जा, जिससे कि दो या तीन गवाहों के मुख से प्रत्येक तथ्य की पुष्टि हो जाए। यदि वह उनकी भी ना सुने तो कलीसिया से कह, यदि वह कलीसिया की भी ना सुने तो वह तेरे लिए अन्य जाति और कर वसूल करने वाले के समान ठहरे। कुछ लोग हैं जो समस्या को आया गया करके गड़बड़ी पसंद करते या छिपा देते हैं। यह वह तरीका नहीं है जिसे प्रभु हमें नियंत्रित करने के लिए कह रहे हैं। यदि दो विश्वासियों के बीच में कोई समस्या है तो इसका समाधान मिलनसार तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से और विशिष्ट तरीके से होना चाहिए। यदि वे व्यक्तिगत रूप से हल नहीं कर पाते हैं तो उसे समुदाय के पास ले जाएं। यदि समूह भी हल नहीं कर पा रहा है तो उसे आखिरी स्थान अर्थात कलीसिया में समस्या को लेकर जाएं, और कलीसिया इसकी अंतिम अधिकारी होगी। इस विषय पर प्रभु यीशु उपसंहार में कहते हैं, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 18 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मित्रों हमने इस विषय पर पहले ही मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 19 पद में अध्ययन कर लिया है, जहां पर हमने सीखा था कि यदि हम शब्द को थामे रहे तो हम उसे पृथ्वी पर बांधते हैं, यदि हम परमेश्वर का वचन को दूसरों को देते हैं तो हम उसे पृथ्वी पर खोलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 19 और 20 पद में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे फिर कहता हूँ यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी विनती के लिए एक मत हो तो वह मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए पूरी हो जाएगी, क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां मैं उनके बीच में हूँ। मित्रों ध्यान दे, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी विनती के लिए एक मत होते हो, क्या उसके कहने का मतलब है कि यदि हम किसी भी चीज पर सहमत हो जाएं, तो वह हमारे सुनेंगे? जी हाँ, पर शर्त पर ध्यान दीजिए, जहां पर दो या तीन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वह कोई भी निवेदन जो यीशु के नाम में है सुनेंगे, और वह निवेदन स्वयं यीशु ही कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसके नाम में मांगना उसकी इच्छा में मांगना है। जहां दो या तीन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां मैं उनके बीच में हूं, यह कलीसिया के संचालन का सबसे साधारण तरीका है। जैसे कि पद 19 प्रार्थना के लिए एक नया आधार है, और पद 20 का एक दृश्यमान कलीसिया के लिए एक नया आधार है। पहली कलीसिया वहां पर आरंभ हुई, प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 42 पद में हम पढ़ते हैं, और वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हम आगे देखते हैं पाप क्षमा के लिए यीशु की नई शर्त। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है, तब पत्रस ने आकर उससे कहा, प्रभु मेरा भाई कितनी बार मेरे विरुद्ध अपराध करता रहे कि मैं उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? मित्रों, पत्रस ने जब इसे कहा तो सोचा कि वह एक विशाल हृदय वाला है, क्योंकि रब्बी अर्थात गुरुओं के अनुसार आपको 2 या 3 बार ही क्षमा करनी थी, और शमौन पत्रस 7 बार क्षमा करने के लिए तैयार था। परंतु पत्रस की उदारता यीशु के नए अनुमान की तुलना में अपर्याप्त थी। हम आगे मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय उसके 22 पद में पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक ही, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसका मतलब 490 बार तक। शायद उस समय तक सब कुछ सुंदर बन जाए, यदि नहीं तो दोनों ही उस समय तक बूढ़ी अवस्था में पहुंच गए होंगे, और इसको आगे बढ़ाना किसी भी कीमत में फायदेमंद नहीं होगा। 490 बार इसे सीमित करने जा रहा है, और यह विषय है जिसे हमारे प्रभु कह रहे हैं। मत्ती सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसके 23 पद से 26 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए स्वर्ग के राज्य की तुलना किसी ऐसे राजा से की जा सकती है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो उसके सामने एक मनुष्य लाया गया जिस पर करोड़ों रुपए का ऋण था। पर जब उसके पास ऋण चुकाने को कुछ न था तो उसके स्वामी ने आज्ञा दी कि उसे और उसकी स्त्री बच्चे सबको तथा जो कुछ उसके पास है सब बेचकर ऋण चुका दिया जाए। इस पर दास ने गिरकर उसे दंडवत किया और कहा, स्वामी धैर्य रख, मैं सब कुछ चुका दूंगा। मित्रों, मैं अनुमान करता हूं कि वह कह रहे थे कि वह चाहता था कि वह इसे किस्त में वापस चुकाए। मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय उसके 27 पद में हम पढ़ते हैं, तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका ऋण भी क्षमा किया। मैं सोचता हूं कि हमारे प्रभु यहां पर एक अनोखे उदाहरण का प्रयोग अपने विषय को प्रमाणित करने के लिए कर रहे हैं। इस दास के पास जो पैसा मालिक का था वह लगभग 1,20,00,000 था। किसी को क्षमा करने के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। हम मत्ती सुसमाचार उसके 18 अध्याय और उसके 28 पद में आगे पढ़ते हैं, परंतु वह दास बाहर निकला और उसकी भेंट संगी दासों में से एक से हुई जो उसका 100 रुपये का ऋणी था। उसने इसे पकड़ा और इसका गला दबा कर कहा, मेरा ऋण चुका। अब आप 100 रुपये को 1 करोड़ से इसकी तुलना करें। हम मत्ती सुसमाचार उसके 18 अध्याय और उसके 29 पद से 35 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, इस पर उसके संगी दास गिरकर अनुनय विनय करने लगा, धैर्य रख, मैं सब कुछ चुका दूंगा। फिर भी वह ना माना और उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डाल दिया जब तक कि वह ऋण ना चुका दे। यह देखकर उसके संगी दास अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने जाकर अपने स्वामी को यह घटना सुनाई। तब उसके स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, हे दुष्ट दास, इसलिए कि तूने मुझसे विनती की कि मैंने तेरा ऋण क्षमा कर दिया, तो फिर मैंने जिस प्रकार तुझ पर दया की, क्या उसी प्रकार तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और उसके स्वामी ने क्रोध से भरकर उसे यातना देने वालों को सौंप दिया कि ऋण चुकाने तक उन्हीं के हाथों में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से प्रत्येक अपने भाई को हृदय से क्षमा न करे तो मेरे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। मित्रों, यह दास का दृष्टांत है जिसे क्षमा कर दिया गया, परंतु उसने अपने संगी मित्र अर्थात दास को क्षमा नहीं किया, अर्थात उसे क्षमा करने से इनकार कर दिया। यह क्षमा करने के सिद्धांत का उदाहरण है। इस परिच्छेद में यह एक नया सिद्धांत है जिसे प्रस्तुत किया गया है, परंतु यह पूर्ण रूप से क्षमा करने का आधार नहीं है, जिसे विश्वासियों के लिए इफिसियों के पत्र 4 अध्याय उसके 32 पद में रखा गया है। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, इसलिए हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। यदि परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है तो हमें भी उसी तरह से दूसरों को भी क्षमा करना चाहिए, अन्यथा हम में से किसी को भी क्षमा नहीं मिलेगी अर्थात क्षमा नहीं की जाएगी। परंतु जब हमारे पाप क्षमा हुए तो हम परमेश्वर के संतान बन गए, तो हमें क्षमा करना चाहिए। मित्रों, वास्तव में यही मसीही आचरण का सिद्धांत है। मित्रों, यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है और हमारे अध्ययन का समय भी समाप्त होता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको इस अध्ययन से अवश्य ही आत्मिक लाभ मिला होगा। हम अगले अध्ययन में पुनः मिलेंगे, तब तक आप इन वचनों पर अवश्य ही विचार करें, और यदि आपने अभी तक किसी को क्षमा नहीं किया है तो आज निर्णय लें और प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपकी सहायता करे कि आप उसे क्षमा कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे।
भूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया, फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया। भटके कदम को तेरे वचन ने राह पर लाया, फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया। बिना था जीवन दुखियारा, पाया तुझे तो पाया जग सारा। तेरे बिना था जीवन दुखियारा, पाया तुझे तो पाया जग सारा। तुझको ही पाने की थी दिल में आस, तुझे जब से चाहा हुआ ये एहसास। फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया। खुशी मिली मेरे मन में तू आया, खुशी मिली मेरे मन को तू भाया, खुशी मिली मेरे मन में तू आया, खुशी मिली मेरे मन को तुभाया। ऐसी खिली मेरे जीवन की बात, मैं मानू तेरा ही है मुझ पर एहसान। फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन ईश को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी।